एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे पढ़ना मतलब एक आसान काम बिल्कुल नहीं है। एक ऐसी किताब जिसे एक वक्त पर अमेरिका में अश्लील मानकर बैन तक कर दिया गया था।
सही बात है।
और जिसकी कोई सीधी साधी कहानी भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि विलियम एस बरोज की नेकेड लंच आज भी इतनी जरूरी और सच कहूं तो इतनी डरावनी क्यों लगती है?
ये सवाल ही इस किताब का मतलब सार है। बरोज अपने दौर के लेखक थे ही नहीं। वो बीट जनरेशन का हिस्सा तो थे, पर जैसे जैके रुएक या एलन गिन्सबर्ग थे, बरोज वैसे नहीं थे।
हाँ, उनका अंदाज बहुत अलग था।
बिल्कुल, वो उम्र में बड़े थे, दुनिया ज्यादा देख चुके थे और उनका नजरिया बहुत ज्यादा सियाह था। उनके लिखने को समझने के लिए उनकी जिंदगी को देखना जरूरी है, मतलब ड्रग्स की लत, सालों तक देश से बाहर रहना
और उनकी पत्नी की वो भयानक मौत।
हाँ, वो एक्सीडेंटल मौत का बोझ जिसमें गोली उन्होंने ही चलाई थी, उस दर्द और अपराध बोध से ही नेकेड लंच का जन्म हुआ है।
और 1959 में जब ये छपी तो इसने एक तरह से भूचाल ला दिया। ये कोई उपन्यास नहीं बल्कि जैसे किसी तेज बुखार में देखा गया सपना हो।
या बुरा सपना।
हाँ, एक बुरा सपना। तो चलिए इस दुनिया में उतरने की कोशिश करते हैं, पर शुरू करें कहाँ से जब कोई पारंपरिक कहानी ही नहीं है?
शुरू करते हैं विलियम ली से, जो बरोज का ही एक ऑल्टर ईगो है। ली एक नशेड़ी है, एक भगोड़ा है जो पुलिस से भाग रहा है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की अंधेरी गलियों से, सस्ते होटल्स, हताश लोग। यहां से ली का सफर उसे मेक्सिको ले जाता है और फिर एक ऐसी जगह जिसका नाम है इंटरजोन।
और यहीं आकर किताब अपना असली रंग दिखाती है, इंटरजोन।
हाँ, ये मोरक्को के टैंजियर शहर पर आधारित है, पर ये कोई ज्योग्राफिकल जगह नहीं है।
बिल्कुल, इंटरजोन एक दिमागी हालत है, एक मानसिक चौराहा जहां हर तरह की वासना, हर तरह की इच्छा को खुली छूट है।
एक ऐसा बाजार जहां सब कुछ बिकता है, ड्रग्स, जिस्म, यहां तक कि आत्मा भी।
ये अराजकता का जश्न लगता है, पर इस ऊपरी सतह के नीचे बरोज एक बहुत गहरा सवाल पूछ रहे हैं।
और वो सवाल है नियंत्रण का, कंट्रोल का। कौन किसे कंट्रोल कर रहा है?
अच्छा,
बरोज के लिए हेरोइन या जिसे वो जंक कहते हैं, वो सिर्फ एक नशा नहीं है, वो नियंत्रण का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी ताकत जो आपकी हर सोच, हर हरकत को तय करती है।
मतलब वो आपको इंसान से घटाकर सिर्फ एक जरूरत में बदल देती है।
बिल्कुल, अगली डोज की जरूरत। और जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो किताब खुलने लगती है।
हाँ, मतलब नशेड़ी और ड्रग्स का रिश्ता असल में मालिक और गुलाम का रिश्ता है।
सही कहा। और बरोज कहते हैं कि यही रिश्ता सरकार और नागरिक का है, कॉरपोरेशन और उपभोक्ता का है। हम सब किसी ना किसी चीज के गुलाम हैं। और इंटरजोन वो जगह है जहां ये सारे रिश्ते नंगे होकर सामने आ जाते हैं।
और इस नंगी सच्चाई को दिखाने के लिए बरोज ने कुछ ऐसे किरदार गढ़े हैं जो आसानी से भुलाए नहीं जा सकते, का अध्ययन कर रहा हो।
ठीक वैसे ही, शायद यही उसका खुद को बचाने का तरीका है। पर जो असली किरदार हैं,
उनमें से डॉक्टर बेनवे मुझे सबसे ज्यादा डरावना लगता है।
हाँ, डॉक्टर बेनवे,
वो कोई टिपिकल विलेन नहीं है। वो एक हंसमुख खुशमिजाज डॉक्टर है जो प्रयोग के नाम पर कुछ भी कर सकता है।
और यही बरोज की सबसे बड़ी आलोचना है। वो कहते हैं कि असली बुराई वो नहीं जो चिल्लाती है, बल्कि वो है जो तर्क और विज्ञान का मुखौटा पहनकर आती है। बेनवे के लिए इंसान सिर्फ एक मशीन है जिसके पुर्जे खोले और बदले जा सकते हैं। एक सीन है जिसमें वो एक भरे हुए ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता है।
हाँ, मैंने पढ़ा है वो।
और बाद में पता चलता है कि उसने गलत आदमी का गलत अंग निकाल दिया है और उसे इस पर कोई अफसोस नहीं बल्कि मजा आता है।
ये सत्ता के अहंकार पर एक बहुत ही क्रूर व्यंग्य है।
वो 20वीं सदी की तानाशाही का प्रतीक है, वो ठंडा तर्कसंगत सिस्टम जो इंसानों को सिर्फ आंकड़े मानता है।
इसके अलावा इंटरजोन में और भी अजीब जीव हैं, जैसे मगवम्प्स।
हाँ, मगवम्प्स, वो कोमल टेलीपैथी से बात करने वाले जीव हैं जिनका लगातार शोषण होता है। और दूसरी तरफ हैं विशालकाय बात करने वाले सेंटीपीड, कनखजूरें,
जो नंगे भ्रष्टाचार और ताकत का प्रतीक हैं।
बिल्कुल, ये दुनिया किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असल में ये हमारे ही समाज का एक बिगड़ा हुआ विभत्स रूप है।
तो अगर कोई सीधी कहानी नहीं है तो फिर किताब आगे कैसे बढ़ती है?
यहीं पर रूटीन्स का आइडिया आता है। ये क्या है?
रूटीन्स असल में छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े हुए व्यंग्यात्मक स्केच हैं, जैसे नरक से आए स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स।
अच्छा।
हर रूटीन समाज के किसी न किसी हिस्से पर हमला करता है, जैसे इंटरजोन की राजनीतिक पार्टियां, सैंडर्स, लिवर्स, फैक्चुअलिस्ट्स।
ये नाम ही इतने अजीब हैं।
हाँ, और ये सब अजीबोगरीब दल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। ये असल में शीत युद्ध की राजनीति पर एक तीखी पैरोडी है।
हाँ,
है
ना? बिल्कुल।
बरोज दिखा रहे थे कि कैसे विचारधाराएं भी एक वायरस की तरह होती हैं, जो इंसानी दिमागों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं।
और ये बात तो आज के जमाने में और भी ज्यादा प्रासंगिक है।
बहुत ज्यादा। सोचिए मीम्स के बारे में, या कैसे कोई एक राजनीतिक नारा रातों रात सबकी जुबान पर चढ़ जाता है। बरोज इसी की बात कर रहे थे कि कैसे भाषा हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है।
और इसी विचार से उनका एक और बड़ा थीम जुड़ा है, भाषा एक वायरस है।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है।
उनका मानना था कि हमारी जो पारंपरिक भाषा है, कहानी कहने का जो सीधा सरल तरीका है, ये सब हमारे विचारों को कैद करते हैं, एक झूठी व्यवस्था हम पर थोपते हैं।
इसीलिए उन्होंने नेकेड लंच को इस तरह लिखा, खंडित, टूटा हुआ, मति भ्रम जैसा।
वो भाषा के उस पिंजरे को तोड़ना चाहते थे।
और इस किताब का कोई अंत भी नहीं है, मतलब कहानी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, वो बस रुक जाती है।
ऐसा लगता है जैसे भाषा का वायरस आखिर में किताब को ही खा गया। ये मुक्ति की कहानी नहीं है, ये शख्सियत की पूरी तरह बिखर जाने की कहानी है।
और इस बेचैनी को पैदा करने के लिए बुरोज जिस शैली का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने आप में क्रांतिकारी है। इसमें बॉडी हॉरर का बहुत इस्तेमाल है।
हाँ, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। शरीर अंदर बाहर हो जाते हैं, इंसान कीड़ों में बदल जाते हैं, मांस और मशीन एक हो जाते हैं।
पर ये सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अमानवीकरण को दिखाने का एक तरीका है। ये दिखाने का कि जब हम पर नियंत्रण हावी हो जाता है तो हम अपनी शारीरिक स्वायत्तता कैसे खो देते हैं।
किताब की भाषा भी वैसी है, मतलब सड़क छाप गुंडों की भाषा, मेडिकल टर्म्स और काव्यात्मक मति भ्रम का एक पागलपन भरा मिश्रण।
इसे पढ़ना एक तेज बुखार वाले सपने से गुजरने जैसा है, डरावना भी और किसी वजह से आकर्षक भी।
तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए शायद हमें किताब के शीर्षक पर ही लौटना होगा, नेकेड लंच। इसका मतलब क्या है?
खुद बरोज ने इसे समझाया था। उन्होंने कहा, नेकेड लंच वो जमा हुआ पल जब हर कोई देखता है कि उसके कांटे के सिरे पर असल में क्या है।
वाह, ये तो
ये भयानक स्पष्टता का एक क्षण है, जब समाज के सारे दिखावे, सारे पर्दे हट जाते हैं और आपको नीचे की कच्ची शिकारी हकीकत दिखती है।
ये वो पल है जब आपको एहसास होता है कि आप असल में क्या खा रहे हैं और आपको क्या खा रहा है।
बिल्कुल। ये वो पल है जब आप देखते हैं कि जिस सिस्टम पर आप भरोसा कर रहे हैं वो असल में आपको ही नोच रहा है। एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला विचार है ये।
एक और पंक्ति है जो इस किताब की आत्मा को पकड़ती है, बुराई का चेहरा हमेशा पूर्ण आवश्यकता का चेहरा होता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
ये पंक्ति नशे के व्यक्तिगत अनुभव को बुराई की एक सार्वभौमिक परिभाषा से जोड़ती है। बरोज के लिए बुराई कोई शैतानी ताकत नहीं है।
तो फिर क्या है?
बुराई है एक जीव की वो हताश अतृप्त भूख जिसे मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बिना किसी नैतिकता या सहानुभूति के।
चाहे वो ड्रग्स की भूख हो, सत्ता की भूख हो या नियंत्रण की।
हाँ।
जब जरूरत हर चीज पर हावी हो जाए तो वहीं से सबसे बड़ी क्रूरता पैदा होती है।
तो अंत में, नेकेड लंच कोई कहानी नहीं है जिसे आप पढ़ें और भूल जाएं। ये एक अनुभव है, एक साहित्यिक हमला जो पाठक को आराम से बैठने नहीं देता।
हाँ, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें उन अदृश्य नियंत्रण प्रणालियों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जो आज भी हमारे समाज को आकार देती हैं।
चाहे वो तकनीक हो, उपभोक्तावाद हो या राजनैतिक बयानबाजी।
ये किताब एक चेतावनी की तरह है जो पूछती है, क्या आपने आज अपने कांटे पर देखा कि क्या है? ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।